4. उपनिषद काल। शैव धर्म के विकास के विषय में उपनिषदों से पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। छांदोग्य, बृहदारण्य, मैत्रेय, महानारायण, नरसिंह, तापनी, श्वेताश्वतर आदि उपनिषदों में रुद्र के वैभव तथा प्रभाव का वर्णन उपलब्ध होता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में रुद्र की एकता, जन निर्माण में निरपेक्षता, विघ्न के अधिपति, महर्षित्व, देवताओं के उत्पादक तथा ऐश्वर्य संपन्न बनाने के सिद्धांतों की विवेचना स्पष्ट की गई है। एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्युः यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वव्याधियुक्तो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भ जनयाभाष पूर्वं स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु। श्वेताश्वतर उपनिषद में रुद्र शिव संबंधी विचार का विकास प्राप्त होता है। यह उपनिषद शिव को महेश्वर और माया कहता है। मायाम तु प्राकृतिम विद्यात्माइनम तु महेश्वरम। इन मंत्रों के वर्णन से ज्ञात होता है कि रुद्र शिव विषयक विचारों का विकास इस काल तक व्यापक हो गया था। श्वेताश्वतर उपनिषद के तृतीय अध्याय के आरंभ में यह स्वीकार किया गया है कि ईश्वर एक है। वह जगत रूप जाल का अधिपति जालवान होकर अपनी शासन शक्तियों द्वारा समस्त लोकों पर शासन करता है। वह अकेला ही सृष्टि और उसके विस्तार में समर्थ है। उसको जो जान लेता है वह अमर हो जाता है। जो अपनी शक्तियों द्वारा इन सब लोकों पर शासन करता है वह रुद्र एक ही है, दूसरा नहीं। वह समस्त जीवों के भीतर स्थित है, समस्त भूतों की रचना करके उनका पालन करता है एवं प्रलय काल में समस्त वस्तुओं को समेट लेता है। उसके नेत्र सर्वत्र हैं, उसके मुख सर्वत्र हैं। वह देवों का प्रभाव एवं उद्भव है। वह विद्वाधिपति तथा महान ज्ञानी है। उसने पहले हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया था। वह परम देव रुद्र हम लोगों को शुभ बुद्धि प्रदान करे। इस उपनिषद के चतुर्थ अध्याय में माया प्रकृति को कहा गया है तथा माया के प्रयोग करने वाले को महेश्वर कहा गया है। महेश्वर शिव का नाम है। प्रत्येक योनि के अधिष्ठाता, समस्त भूतों के आश्रयदाता और वर देने वाले इस ईशान को जानकर मनुष्य शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। डॉक्टर आरजी भंडारकर का मत है कि ईश्वरवाद श्वेताश्वतर उपनिषद में अपनी पूर्णता को पहुंच गया है एवं ईश्वर की भी व्यक्तित्व विभूषित हो गया है। परमात्मा के वाचक शब्द अत्यंत सामान्य हैं। प्रायः देव शब्द से जिसका किसी संप्रदाय विशेष के संबंध नहीं है उसका निरूपण किया गया है। उस देव को रुद्र, शिव, ईशान अथवा महेश्वर से अभिन्न बतलाया गया है एवं उसकी शक्तियों को ईशानी कहा गया है। किंतु यहाँ पर ऐसा कोई भी संकेत नहीं है कि ये नाम अन्य देवों को हटाकर एकमात्र रुद्र शिव को परमेश्वर की कोटि में पहुँचाने के उद्देश्य से रखे गए हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद के काल तक रुद्र शिव की पत्नी का वर्णन नहीं प्राप्त होता है। केन उपनिषद में उमा का नाम वर्णित है। इस उपनिषद में इन्हें हेमवती या हिमवान की पुत्री स्वीकार किया गया है। केन उपनिषद में उनका उल्लेख रुद्र शिव की पत्नी के रूप में नहीं हुआ, यद्यपि वे बाद में रुद्र शिव की पत्नी कहलाने लगी। अथर्व शिरस उपनिषद रुद्र से संबंधित है। इस उपनिषद में वर्णन है कि देवता स्वर्ग गए और उन्होंने रुद्र से पूछा कि वह क्या है। उसने कहा कि वह अकेला ही था, अकेले ही है और अकेले ही रहेगा तथा उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वह समस्त दिशाओं में है। वह गायत्री है, पुरुष, स्त्री आदि सब कुछ है। और इसी प्रकार जिन अनेक वस्तुओं का उल्लेख किया गया है उनसे वह अभिन्न है। इसके बाद रुद्र अदृश्य हो गया। देवों ने हाथ जोड़कर इस प्रकार उसकी स्तुति की। जो भगवान है तथा जो ब्रह्म देव भी है उसे नमस्कार है। अथर्व शीरस उपनिषद के वर्णन का सारांश शंकरानंद ने इस प्रकार किया है। रुद्र के ज्ञान के लिए पुरुष को संयत भोजन करना चाहिए, अपने को श्रवण मनन आदि में लगाना चाहिए, परमहंस या एकाग्रचित भक्त बन जाना चाहिए और इस प्रकार अपना समय बिताना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, ओम का जाप करना चाहिए तथा अवगति या प्रत्यक्ष में परिणत होने वाले ध्यान को करना चाहिए। 5. महाकाव्यकाल। महाभारत में भी शैव धर्म की पुष्टि होती है तथा उससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि उस काल में रुद्र शिव या शिवलिंग की उपासना प्रचलित थी। वन पर्व में अर्जुन द्वारा हिमालय जाने का वर्णन किया गया है। वहां पर अर्जुन ने तप किया, कुछ समय उपरांत किरात के वेश में वहां शिव उपस्थित हुए तथा उन दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। अंत में अर्जुन पराभूत हो गए और शांत होकर भूमि पर लेट गए। इसके पश्चात उन्होंने शिव की स्तुति की एवं मिट्टी की वेदी बनाकर उस पर शंकर के नाम से पुष्प चढ़ाए, किंतु ये पुष्प किरात के सिर पर रखे हुए दिखाई पड़े। तब अर्जुन को बोध हुआ कि किरात शिव ही है। वे अपने समक्ष आत्मसमर्पण कर दिए। इस पर शिव प्रसन्न हुए तथा मनोवांछित वर मांगने को बोले। अर्जुन ने उनसे पाशुपत अस्त्र मांगा जिसमें समस्त दुर्जय शत्रुओं के नाश करने की शक्ति थी। द्रोण पर्व में अर्जुन द्वारा पुनः पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने का वर्णन किया गया है। यह यहाँ पर दूसरे भांति का मालूम पड़ता है, उसमें धनुष और बाण दोनों हैं। सौप्तिक पर्व में वर्णन है कि अश्वत्थामा ने शंकर की आराधना की और उनसे एक खड्ग प्राप्त किया। स्वयं शिव उसके शरीर में प्रविष्ट हो गए। अश्वत्थामा ने उस खड्ग से पांडवों के शिविर में उत्पात मचा दिया और अपने पिता द्रोण के काटने वाले धृष्टद्युम्न तथा समस्त पांडव पुत्रों का वध कर डाला। युधिष्ठिर द्वारा पूछे जाने पर कृष्ण ने बताया कि यह सब अश्वत्थामा ने शंकर की शक्ति से किया। उन्होंने उसके बारे में एक और कथा का वर्णन किया। एक बार जब ब्रह्मदेव ने शंकर से सृष्टि करने के लिए कहा तो वे बहुत काल तक जल में विलीन रहे। लंबे समय तक सृष्टि न होने पर ब्रह्मदेव ने दूसरे प्रजापति की सृष्टि की। नए प्रजापति ने बहुत बड़ी संख्या में प्राणियों को उत्पन्न किया। ये क्षुधा से पीड़ित ये प्राणी प्रजापति को खाने के लिए उनके समीप पहुंचे। तब भयभीत प्रजापति रक्षा के लिए हिरण्यगर्भ के पास गए। हिरण्यगर्भ ने इन प्राणियों के लिए दो प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाया और तब से प्राणी शांत हो गए। कुछ समय बाद जब महादेव जल से बाहर निकले तब देखा कि नए प्राणियों की रचना की गई है जो बहुत खुशहाल है। इन्होंने अपने लिंग की काट को काट डाला क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं थी। इसके पश्चात शंकर तप करने के लिए मुंजवान पर्वत की उपत्यका में चले गए। महादेव की सृष्टि में विरत होने एवं योगी होने की इस प्रकार की कथा वायु पुराण में भी प्राप्त होती है। अनुशासन पर्व में लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। इन विवरणों से स्पष्ट है कि महाभारत काल में शिव एवं शिवलिंग की उपासना प्रचलित थी। महाभारत के शिव शक्तिशाली, क्रोधी और प्रचंड परंतु कृपाली एवं दानी देव हैं। प्रसन्न कर लिए जाने पर वे सब कुछ देते हैं। अभिष्ट की प्राप्ति हेतु इनकी आराधना का वर्णन है। ऐसा वर्णन है कि वे हिमालय में अपनी पत्नी उमा पार्वती या दुर्गा के साथ रहते हैं, जिनके अनेक नाम हैं। अनेक प्राणी इनकी सेवा करते हैं जिन्हें गण कहा जाता है। इनका वाहन वृषभ है। इस प्रकार इनमें परमेश्वर के समस्त लक्षण विद्यमान हैं। रामायण तथा महाभारत में शिव एक श्रेष्ठ देवता हैं। यह शास्त्रों के भी देवता हैं। कृष्ण तथा अर्जुन ने पाशुपतास्त्र की याचना इन्हीं से की थी। यहाँ विभिन्न पर्वों में देवताओं द्वारा शिव की आराधना करने तथा उनको प्रसन्न कर उनसे फल प्राप्त करने का उल्लेख है। इसी प्रसंग में कृष्ण द्वारा शिव की आराधना करने तथा इससे प्रसन्न होकर शिव द्वारा उनको मनोवांछित फल प्रदान करने का वर्णन है। यह अन्य देवताओं की अपेक्षा शिव की महत्ता को अधिक प्रदर्शित करता है। दूसरे विवरणों में शिव को समाज में शक्ति का प्रतीक चित्रित किया गया है। इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि पाशुपतास्त्र की कामना कर रहे कृष्ण और अर्जुन जब शिव के निर्देश पर एक सरोवर के किनारे पहुंचे तो वहां उन्हें दो सर्प दिखे जो पीछे धनुष और बाण के रूप में परिवर्तित हो गए। इससे स्पष्ट होता है कि नाग परंपरा भी शिव के साथ सामाजिक जीवन में समाहित हो चुकी थी। लिंग पूजा का भी ज्ञान महाभारत से होता है। अनुशासन पर्व में इसका उल्लेख हुआ है। यह अनार्य प्रभाव के परिणाम स्वरूप शिव की उपासना में जुट गया होगा, किंतु लिंग आकृतियों का ज्ञान ऐतिहासिक काल में कुषाण काल तक साहित्य या कला से नहीं होता। सर्वत्र शिव की मूर्ति के पूजन का ही ज्ञान प्राप्त होता है। इससे लगता है कि लिंग पूजा का व्यापक चल गुप्त काल से ही आरंभ हुआ होगा। रुद्र शिव से अलग स्थानीय रुद्रों का ज्ञान भी महाभारत से प्राप्त होता है। शांति पर्व के दक्ष यज्ञ की कथा में दक्ष ने 11 रुद्रों की बात की है, किंतु ये सभी अपने को माहेश्वर से अनभिज्ञ बताते हैं। इससे स्पष्ट है कि रुद्र शिव के अतिरिक्त भी स्थानीय रुद्र देवताओं की मान्यता थी, अतः स्थानीय रुद्र संप्रदाय शिव के साथ समाहित हो गया। यह भी उल्लेखनीय है कि शिव विकार विनाशक देवता होने के कारण अस्त्रों के भी स्वामी के रूप में पूजे जाते थे। रामायण के विवरण के अनुसार राम लक्ष्मण को जब विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले जा रहे थे तो उनको शिव अस्त्रों की आराधना करके ही दो दिव्य अस्त्र दिलाया जिनको कोई काटने वाला दूसरा अस्त्र नहीं था। इसी प्रकार महाभारत के अनेक पर्वों में शिव की कृपा से अर्जुन कृष्ण अश्वत्थामा आदि को अनेक शस्त्रास्त्र प्राप्त होने का ज्ञान प्राप्त होता है। 600 ईसा पूर्व से ईसवी सन तक एक साहित्य और पुरातत्व पर आधारित 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य शासक चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाले यूनानी दूत मेगस्थनीज के भारत यात्रा के विवरण से इस पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। उसके अनुसार पर्वतों पर रहने वाले भारतीय डायोनिशियस की उपासना करते थे। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में इस देवता को रोग निवारक बताया गया है तथा इसे उत्पादक क्रिया वाला लिंग और सर्प चिन्हों से युक्त कहा गया है। ये सभी विशेषताएं रुद्र शिव में ही स्पष्ट रूप से पाई जाती हैं। अतः यूनानी यात्रा द्वारा डायोनीशियस शब्द भारतीय रुद्र शिव के लिए ही प्रयुक्त होती होगी। लेवी के अनुसार महामयूरी में शिवपुरी के प्रमुख देव शिव बताए गए हैं। पतंजलि के महाभाष्य में शिवपुरी को उदिच्य ग्राम कहा गया है, अतः यह शिवी जनपद रहा होगा। स्ट्रैबो के अनुसार क्षुद्रक ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ एक गढ़ तथा शिवी झेलम तथा चिनाव नदियों की घाटी में बसा हुआ एक गढ़ पशुओं का चमड़ा पहनते थे और भाले की तरह का एक अस्त्र प्रयोग करते थे। शिव के वस्त्र में मृग चर्म तथा हाथ में त्रिशूल का उल्लेख प्रायः मिलता है, अतः ये शिव के स्वरूप को धारण करने वाले होंगे। पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवतों द्वारा अपने आराध्य देव के प्रतीक स्वरूप हाथ में लोहे का भाला रखने का उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि ये दोनों गण शैव धर्मानुयायी थे। महाभारत के अनुसार दक्ष यज्ञ में रुद्रों की इसी वेशभूषा का उल्लेख किया गया है। चूंकि ये गणराज्य सिकंदर के आक्रमण के बहुत पहले से ही पश्चिम भारत में स्थित थे, अतः बौद्ध काल में भी शैव धर्म के व्यापक प्रसार का ज्ञान प्राप्त होता है। उपर्यंकित विवरण तथा विदेशी वर्णन के अनुसार इस धर्म का प्रचार भारत के उत्तर पश्चिम में बल्क अफगानिस्तान तथा उत्तर में मेरू पर्वत पामीर तक था तथा मेगस्थनीज तथा पतंजलि दोनों ने इसका उल्लेख किया है। भीटा से प्राप्त प्रथम शताब्दी के एक पंचमुख शिवलिंग पर ब्राह्मी में नागश्री का उल्लेख है। डॉक्टर सुधाकर चट्टोपाध्याय के अनुसार यह व्यक्त करता है कि नाग संप्रदाय भी शैव धर्म में किसी न किसी प्रकार समाहित हो गया था। इसी प्रकार महाभाष्य में प्रयुक्त शिव भागवत, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, स्पष्ट करता है कि शुंग काल से शैव और वैष्णव धर्म के बीच भी समन्वय की स्थिति आने लगी थी। तभी दोनों संप्रदायों का सम्मिलित उल्लेख यहाँ हुआ है तथा शिव उपासकों को भी वैष्णव भागवतों की तरह शिव भागवत कहा जाने लगा था। गीता दूसरी शती ईसा पूर्व की रचना है, इसमें समन्वय का व्यापक ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ कृष्ण ने कहा है कि जो कोई भी जिस देवता की आराधना करता है, मैं उसी में उसकी वास्तविक निष्ठा उत्पन्न करता हूँ। इससे स्पष्ट है कि दोनों धर्मों के बीच की दूरी मिटने लगी थी। डॉक्टर बासम ने कहा है कि इस प्रकार के कई श्लोक गीता में आए हैं, जिनके आधार पर शैव धर्म का तत्कालीन प्रचलित वैष्णव धर्म के साथ समन्वय की बात स्वीकार की जा सकती है। अब तक इसका प्रसार दक्षिण पश्चिम में उज्जैन तक तथा पश्चिम उत्तर पश्चिम में तक्षशिला और दुम्बर देश तक हो चुका था, क्योंकि डॉक्टर एन बनर्जी के अनुसार उज्जैनी के एक सिक्के पर शिवलिंग अंकित मिला है। वहीं से प्राप्त कुछ सिक्कों पर शिव की खड़ी आकृतियां भी अंकित है, जिनके दाहिने हाथ में दंड है और बाएं में कलश, कुछ शिर पर तीर की आकृति का अंकन हुआ है। दो, पुराण पर आधारित। पुराणों में शैव धर्म का व्यापक वर्णन प्राप्त होता है। कुछ पुराण शुद्ध शैव मत के प्रतिपादक हैं, जैसे लिंग पुराण, शिव पुराण आदि। वामन पुराण में शैवों के चार मत बताए गए हैं, शैव, पाशुपत, कालदमन तथा कापालिक। कालदमन को ही वाचस्पति मिश्र ने कारुणिक सिद्धांतों का नाम दिया है। यमुनाचार्य ने इसको कालामुख स्वीकार किया है। कालामुख का नाम ही अधिक प्रचलित है। इस प्रकार माहेश्वर संप्रदाय शैव, पाशुपत, कालामुख और कापालिक है, परंतु दार्शनिक दृष्टिकोण में शैव और पाशुपत संप्रदायों का विशिष्ट स्थान रहा है। पाशुपत संप्रदाय किसी समय सर्वाधिक प्रचलित था, परंतु आज वह लुप्त हो गया है। फिर भी आज शैव संप्रदाय अपने तीन रूपों में प्रचलित है, काश्मीरी शैवमत, वीर शैवमत और शैव सिद्धांत। काश्मीरी शैवमत का प्रचार पहले काश्मीर में था, किंतु अब उसके मानने वाले तथा विद्वान संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं। वीर शैवमत का प्रचार एवं प्रसार क्षेत्र मैसूर या कर्नाटक है। शैव सिद्धांत का प्रचार क्षेत्र तमिलनाडु है। इस प्रकार देखते हैं कि पुराणों के काल में शैव धर्म के मत ने भी विकसित होकर संप्रदायों का रूप धारण कर लिया था। दो, आगम पर आधारित। यद्यपि शैव मत के उद्भव स्रोत वेद तथा वैदिक परंपरा के साहित्य स्वीकृत किए गए हैं, तथापि शैव मतों के मूल ग्रंथों को शैव आगम कहते हैं। अप्पई दीक्षित ने शिवाकर्मणि दीपिका में शैवागम के वैदिक एवं अवैदिक दो वेद बताए हैं। वैदिक शैवागम वेदाधिकारियों के लिए है और अवैदिक शैवागम वेद के अनाधिकारियों के लिए है। आजकल अवैदिक शैवागमों की परंपरा वैदिक शैवागमों से प्राचीन मानी जाती है। आगमों के शैव मत को ही मुख्य रूप से शैव मत स्वीकार किया गया जाता है। अवैदिक शैव आगमों के विषय में धारणा है कि ये अधिकांशतः लुप्त हो गए हैं। अभिनव गुप्त के समय में संभवतः कैलाशपति भगवान श्रीकंठ ने अपने भक्त दुर्वासा को आदेश दिया था कि तुम लुप्त आगम शास्त्र का उद्धार करो। तदनुसार दुर्वासा ने आगम शास्त्र को तीन भागों में विभक्त किया, द्वैत, द्वैताद्वैत तथा अद्वैत। इन्हें त्रयंबक, आत्मर्दक और श्रीनाथ नामक अपने तीन मानस पुत्रों को पढ़ाया। इन्हें शिष्यों द्वारा क्रमशः अद्वैत, द्वैत तथा द्वैताद्वैत नामक आगम का प्रचार हुआ। इन आगमों को क्रमशः भैरव तंत्र, शिव तंत्र और रुद्र तंत्र कहा गया है। इनके अतिरिक्त एक चौथी धारा है जो त्र्यंबक की कन्या द्वारा प्रसारित हुई, यह शाक्तागम कहलाए। भैरव आगम 64 है, शैव 10 और रौद्र आगम 18 है। शैव आगम और रौद्र आगमों को शैव मत में प्रधानता मिली है और भैरव आगमों को शाक्तागम में विशेष महत्व दिया गया है। कुछ विद्वानों का कथन है कि उनकी मूल भाषा तमिल है, जहां से संस्कृत में उनका अनुवाद किया गया है। 4. गृह सूत्र पर आधारित। इन सूत्रों के काल में भी रुद्र को उग्र देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। उन्हें घर से दूर के प्रदेशों, मैदानों, शून्यारण्यों, श्मशानों, पर्वतों, प्राचीन वृक्षों एवं नदियों पर आधिपत्य रखने वाले देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। जब कभी किसी मनुष्य को कोई अमांगलिक एवं अभयदायक अमांगलिक एवं भयदायक वस्तु मिलती थी तो उससे रक्षा के लिए रुद्र की स्तुति की जाती थी। डॉक्टर भंडारकर का मत है कि यही कारण है कि आगे चलकर रुद्र विष्णु के अतिरिक्त अन्य सभी वैदिक देवों को हटाकर सर्वव्यापी एवं समस्त जगत के एकमात्र प्रभु बन गए। वैष्णव धर्म की क्रियाओं में प्रेम, स्तुति और पूजा को जगाने वाले दृश्यों और घटनाओं का योगदान है, जबकि शैव धर्म के मूल में भय की भावना है। भले ही इस धर्म के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में यह भावना दब गई हो, सुप्रसिद्ध तत्व चिंतक श्री राम बालक बाबा का भी यही मत है कि शैव उपासना में भय से भक्ति उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। रुद्र की वंदना गृहसूत्र काल में प्रमुख हो गई। पारस्कर गृहसूत्र के विवरण से स्पष्ट ज्ञात होता है कि मार्ग पार करते समय चौराहे पर पहुंचते समय, नदी पार करते समय, नाव में चढ़ते समय, जंगल में प्रवेश करते समय, पर्वत पर चढ़ते समय, श्मशान, गौशाला तथा ऐसे ही अन्य स्थानों से होकर जाते समय रक्षार्थ रुद्र की वंदना करनी चाहिए। इसी तरह हिरण्य गृह सूत्र का निर्देश है कि कोई यात्री जब किसी चौराहे पर गोबर के ढेर के पास पहुंचे या जब सर्प रास्ता कट जाए या जब वह चित्र विचित्र दृश्य में यज्ञ स्थल या पुराने बड़े वृक्ष को देखे, तब उसे ग्रंथ में दिए गए विशेष मंत्र के जप द्वारा रुद्र की अर्चना करनी चाहिए। इस तरह हम देखते हैं कि गृह सूत्र कालीन रुद्र उग्र देव थे, अब शकुनों के नाशक थे। ईस्वी सन से गुप्त पूर्व काल तक इस समय पश्चिमी, पश्चिमोत्तर तथा मध्य भारत पर विदेशी प्रभाव विद्यमान था। शक तथा कुषाण शासकों का आधिपत्य इन क्षेत्रों पर था। ये विदेशी होकर भी भारतीय परंपरा को आत्मसात करने लगे थे, क्योंकि उनका लक्ष्य मात्र भारत विजय करके अपने देश लौट जाना नहीं था, अपितु यहाँ बसना और शासन करना था। इस समय अनेक शैव संप्रदायों का उदय हुआ। इनमें प्रमुख हैं 1. लकुलिश संप्रदाय। इस संप्रदाय का संस्थापक नकुली या लकुली था। इसके नाम पर ही इसके द्वारा स्थापित संप्रदाय लकुलिश संप्रदाय के नाम से विख्यात हुआ। बहुत दिनों तक लकुलिश संप्रदाय के संस्थापक लकुली की स्थिति विद्वानों के सामने समस्या बनी रही। इस गुत्थी को डॉक्टर भंडारकर ने सुलझाया। अभिलेखों तथा पुराणों के आधार पर उन्होंने बताया कि वायु पुराण और लिंग पुराण के एक उद्धरण में महेश्वर का अंतिम अवतार लकुली बताया गया है। उनका यह अवतार कायावतार के समय हुआ था। उनके 4 शिष्य थे, कुशिक, गार्ग, मित्र और कौरुष्य। कुशिक की चर्चा चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में भी आई है। इस कुशिक तथा लकुली के शिष्य कुशिक को अभिन्न मानकर इनको लकुली का परम शिष्य बताया गया है। इसी अभिलेख में कुशिक के 10वें पीढ़ी में उदिताचार्य का होना बताया गया है। इस अभिलेख की तिथि 380 ईस्वी है। यदि एक पीढ़ी का समय 25 वर्ष माना जाए तो उदिताचार्य की तिथि इस लेख से 250 वर्ष कुशिक के बाद रह जाती है। अतः कुशिक की तिथि 380 से 250 ईस्वी 130 ईस्वी होगी। अतः कुशिक की तिथि 380 ईस्वी माइनस 250 ईस्वी इज इक्वल टू 130 ईस्वी होगी। यदि यह इनकी ज्ञात अंतिम तिथि है तो 25 वर्ष पूर्व इस पीढ़ी में लकुली हुआ होगा। अतः लकुली की अनुमानित तिथि 105 से 130 ईस्वी मानी जा सकती है। परमथुरा के उपर्यंकित अभिलेख में लकुली का नाम न होकर उनके शिष्य कुशिक का ही उल्लेख है। इससे लगता है कि तब कुशिक जो लकुली के शिष्य थे विशेष प्रभावक हो गए थे। इसी समय का दूसरा ग्रंथ है पाशुपत्र सूत्र। आर अनंत कृष्णन शास्त्री के अनुसार इसकी रचना लगभग 100 से 200 ईस्वी के बीच हुई होगी। इस ग्रंथ को लकुली ने अपने शिष्य कुशिक को पढ़ाया था, जो इसे पढ़ने के लिए ब्रह्मावर्त से आए थे। इसमें निर्देश है कि शैव धर्म के अनुयायी शूद्रों तथा स्त्रियों के स्पर्श से दूर रहें। उनके स्पर्श से छूत लगता है, यदि वह किसी भी प्रकार से छू जाते तो रुद्र गायत्री मंत्र के उच्चारण द्वारा उन्हें अपने को पवित्र कर लेना चाहिए। इस संप्रदाय में भक्ति पर विशेष बल दिया गया है। यहाँ मन में भगवत भजन करने का निर्देश है। इसके अनुयायी को दिन में 3 बार अपने शरीर पर भस्म के लेप करने का आदेश दिया गया है। इसको एकांतवासी या गुहावासी होकर या श्मशान में रहना चाहिए। अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना तथा भिक्षाटन करना अपने लिए विहित बताया गया है। उसे भिक्षाटन में प्राप्त अन्न के द्वारा ही अपनी जीविका का निर्वाह करना चाहिए। इनके लिए मांसाहार की स्वीकृति दी गई है, पर ऐसा मांस विवर्जित है जो अपने भोजन के उद्देश्य से पशुओं की हत्या करके प्राप्त किया गया हो। उसके पास केवल एक वस्त्र हो तथा उसका व्यवहार इस प्रकार का हो कि सामान्य लोग उसके व्यवहार को देखकर उसके प्रति उपेक्षा की दृष्टि रखें। उनके लिए ऐसी क्रियाओं की स्वीकृति दी गई है जो वाम मार्गी शाक्तों द्वारा प्रयोग की जाती थी। इस प्रकार सन्यासी दंडधारी होता है। उसी प्रकार इस संप्रदाय के मानने वालों को लिंगधारी होने का निर्देश दिया गया है। लिंगधारी से अभिप्रेत है कि जैसे सन्यासी अपने साथ दंड रखते हैं, उसी प्रकार इन्हें भी अपने साथ सदा शिवलिंग रखना चाहिए। इस ग्रंथ में जो भी निर्देश दिए गए हैं वे अतिवादी या कट्टरवादी हैं, पर ऐसा क्यों? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि विदेशियों ने से अपने धर्म को बचाए रखने के लिए इस धर्म में कट्टरता अपनाई गई। इस प्रकार लकुली ने इन आदर्शों की स्थापना के द्वारा इस संप्रदाय में शुद्धता बनाए रखने का प्रयास किया। यही कारण है कि रूढ़िवादी पाशुपतों द्वारा यह संप्रदाय निंदित माना जाता था। 2. पाशुपत संप्रदाय। दूसरी ओर हम देखते हैं कि नई विदेशी शक्तियों के आगमन के कारण इस संप्रदाय में कुछ उदारता अपनाई गई, जिससे विदेशियों को भी इसमें सम्मिलित किया जा सके। इसी से ईस्वी सन के प्रारंभिक काल में शैव धर्म के उदारवादी दृष्टिकोण में प्रमुखता पाशुपत संप्रदाय को मिलती है। आरपी चंदा के अनुसार इस समय शैव धर्म में अनार्य परंपरा प्रविष्ट हो गई थी। पुरातन वैदिक कालीन रुद्र पूजा की अपेक्षा अब शैव धर्म में पर्याप्त भिन्नता थी। यह बात दक्ष की ज्ञान क्रिया से स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपने यज्ञ में शिव को स्थान दिया। उनके विषय में दक्ष ने कहा था कि माहेश्वर कौन है, जबकि 11 रुद्रों की उन्हें जानकारी थी। उमा के साथ दक्ष द्वारा किए गए दुर्व्यवहार तथा अपने प्रति उनकी उपेक्षात्मक दृष्टि से शंकर ने कुपित होकर वीरभद्र को उत्पन्न किया तथा उमा के ने काली को, जिन्होंने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष के प्रार्थना करने पर शंकर ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इस धर्म की स्थापना मैंने की है जो अद्वितीय है तथा उसके प्रत्येक दृष्टि से लाभकारी है। यह वेदों के वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोधी है। यही धर्म पाशुपत नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत में एक ऐसे संप्रदाय की चर्चा की गई है जो किसी भेदभाव को नहीं मानता या तथा योग के द्वारा सबके लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। ये सभी सिद्धांत तथा वीरभद्र और काली की आकृतियां एवं उनका भयावह स्वरूप द्रविड़ परंपरा की उपज प्रतीत होती है। ये सभी परंपराएं पीछे शैव धर्म में आत्मसात कर ली गई। हॉपकिंस ने भी इन्हें स्थानीय देवता माना है जो क्रमशः शैव धर्म में शिव के साथ उनके स्वरूप तथा पत्नी के रूप में समाहित किए गए। शैव धर्म में पाशुपत संप्रदाय अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसमें शिव को पति के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पशुओं के अंकन के पीछे यह धारणा लगती है कि मनुष्यों को ही पशु रूप में माना गया है जो पाश अर्थात सांसारिक बंधन में फंसे पड़े हैं। चूंकि शिव ही मनुष्य को बंधन मुक्त करते हैं अतः इनको पाशुपति नाम से संबोधित किया गया है। इस समय यह संप्रदाय भारतीय तथा विदेशी संरक्षण में भी फैला। माओवेश के कुछ सिक्कों पर ब्रज तथा त्रिशूलधारी शिव की आकृतियां अंकित हैं, पर इसमें परंपरागत पाशुपत प्रवृत्ति नहीं दिखती। इस प्रकार पार्थियन शासक गंडोफनीज के सिक्कों पर भी शिव अपने बाएं हाथ में चर्म वस्त्र धारण किए हुए अंकित है। कुषाण शासक कुजुल कडफाइसिस के सिक्कों पर वह चर्म का उत्तरीय धारण किए चित्रित किए गए हैं। भीम के सिक्कों पर एक देवता अंकित है जिसके दाहिने हाथ में त्रिशूल और कुल्हाड़ी है तथा वहां उसका नाम माहेश्वर भी अंकित किया गया है। इसी प्रकार यवन भारतीय ग्रीक बक्त्री सिक्कों पर कुबरदार बैल का अंकन है। यह कुबरदार बैल शिव नंदी के प्रतीक के रूप में बनाया गया है। उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम से प्राप्त ये सिक्के परिचायक हैं कि यह क्षेत्र जो विदेशी शासकों के प्रभाव में था वहां इन बलापहारियों के संरक्षण में शैव धर्म के इस संप्रदाय का विकास होता रहा। विदेशी संरक्षण के पीछे कारण रहा होगा कि विदेशों में भी पहले से शैव धर्म व्याप्त था अतः उन्होंने यहां भी इसे अपना संरक्षण दिया। पूरब की ओर बढ़ने पर भीटा बसरा आदि स्थानों से पूर्व गुप्त कालीन मुहरें प्राप्त हुई है। इनसे स्थानीय शासकों द्वारा इसके प्रसार का ज्ञान प्राप्त होता है। बसरा से प्राप्त एक मुहर पर जो इस काल की है नमः पाशुपते अंकित है। महाभारत के एक प्रसंग में कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा है कि जरासंघ के रहते तुम इसमें नहीं सम्मिलित हो सकते क्योंकि उसने सहस्रों राजाओं को जीतकर राजगृह की पहाड़ियों में इसलिए बंदी बना रखा है कि वह उन्हें महादेव के सम्मुख बलिदान करेगा। उसके ऐसा करने का कारण भी बताया गया है कि शिव की भयानक पूजा के द्वारा उसने उन पर विजय प्राप्त की थी। इस प्रसंग से स्पष्ट है कि इस समय शंकर की पूजा में बलिदान भी चढ़ाया जाता था। यहाँ जहाँ ये राजा बंदी बनाए गए थे उसके लिए पाशुपति गृह का उल्लेख है। यहाँ पाशुपति गृह से अभिप्राय शिव मंदिर से है। दो, नए संप्रदायों का उदय। अघोर संप्रदाय। पीछे चलकर शैव धर्म में एक नए संप्रदाय अघोर पंथ का उदय हुआ। इसकी एक झलक वैदिक परंपरा से शिव की पूजा करने की है। महाभारत में उसी का पूर्व रूप देखने को मिलता है। शांति पर्व में वर्णित है कि ब्रह्मचर्य रहकर संन्यास की क्रियाओं के द्वारा आत्मनियंत्रण के साथ वैदिक विधि से त्रिशूलधारी देवता का पूजन अश्वत्थामा के ने किया था। इस पूजा में उसने स्वर्ग से उतरते हुए दैवी विमान को देखा था जिसमें ज्वाला फूट रही थी तथा इसमें लदे हुए बहुत से विभिन्न जानवर थे जिनके अंगों से अग्नि लपटे निकल रही थी। ये जानवर रक्त पान के द्वारा मोटे हो गए थे। अघोर संप्रदाय की विशेषता है रक्त पान तथा अंगों की विकार लता। इस दृष्टि से लगता है कि यह अघोर पंथियों का पूर्व प्रसंग रहा होगा। ब अर्धनारीश्वर संप्रदाय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल को मथुरा से कुषाण कालीन अर्धनारीश्वर की एक मूर्ति मिली है। इस मूर्ति का आधा भाग पुरुष शिव का है और आधा स्त्री पार्वती का। पुरुष तत्व के साथ स्त्री तत्व का यह संयोग अत्यंत विलक्षण है। लगता है कि दोनों ही तत्व एक में समाहित थे। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा ने रुद्र से अपने अंश को विभक्त करने को कहा तो दोनों तत्व एक ही साथ विलग हो गए। डॉक्टर चट्टोपाध्याय ने ऐतिहासिक दृष्टि से इस कथा को बहुत महत्व नहीं दिया है, अतः उन्होंने इसकी व्याख्या को उत्तर द्रविड़ परंपरा में खोजने का प्रयास किया है। धर्म और आचार के विश्वकोश में एक परंपरा का उल्लेख है कि लोगों में विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष खलिहान के बाद पृथ्वी की शक्ति समाप्त हो जाती है और पुनः उत्पादन के समय वह नए रूप में एक नई क्रियाओं के लिए नवजीन प्राप्त करती है। यह भाव अनेक जातियों में अभी भी विद्यमान है। संभव है अर्धनारीश्वर के पीछे यही भावना रही हो, पर उपनिषदों में आत्मा पुरुष को उभय लिंगी कहा गया है। यही पुरुष तथा स्त्री सभी को अपने में से विभाजित करती है। कठोपनिषद में सृष्टि की रचना के लिए ही प्रजापति को उभयलिंगी होना बताया गया है। डॉक्टर डांडेकर तथा गुंटरेट ने यम यमी की ऋग्वैदिक कथा के साथ शिव और शक्ति का संबंध जोड़कर अर्धनारीश्वर संप्रदाय की उत्पत्ति बताया है। डॉक्टर चट्टोपाध्याय ने शिव और विष्णु के संयोग से इसकी उत्पत्ति बताया है। इसकी पुष्टि के लिए हुविस्क के एक सिक्के का उदाहरण लिया जा सकता है जिस पर अंकित शिव के हाथ में चक्र के साथ त्रिशूल और वज्र है। इसी भावना के पीछे हरिवंश पुराण में हरिहर की भावना को स्थान दिया गया है। इस प्रकार दोनों संप्रदाय शैव और वैष्णव एक दूसरे के समीप आ गए। इस मूर्ति में शिव पुरुष रूप में अंकित है और विष्णु शक्ति के रूप में। यहाँ उल्लेखनीय है कि इस मान्यता को स्वीकार करने के पीछे कारण है कि ऋग्वेद में रुद्र और सोम का संबंध बताया गया है। महाभारत में रुद्र को अग्नि के रूप में तथा विष्णु को चंद्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इसलिए हरिहर प्रतिमाओं में शिव का रूप वैसा ही है जैसा अर्धनारीश्वर प्रतिमाओं में शिव का। अतः हरि के स्थान पर अर्धनारीश्वर प्रतिमाओं में शक्ति ने स्थान लिया है। इस संबंध में जे एस तारपुरवाला ने सुझाया है कि ईश्वर में त्रिगुणात्मक शक्ति होती है, सत, चित और आनंद। चूंकि मानव ईश्वर की सृष्टि है अतः वह भी त्रिगुणात्मक शक्ति युक्त होता है। सत उसका वास्तविक स्वरूप होता है, चित उसके बाह्य जगत की चेतना होती है। जब ये दोनों परस्पर मिल जाते हैं तो वह सामान्य स्थिति से बहुत ऊपर उठकर आनंद की कोटि में पहुंच जाता है। यहाँ आनंद की स्थिति दोनों की समन्वयक स्थितियां होती हैं। दूसरी दृष्टि से सत और चित परब्रह्म परमात्मा में स्थिति क्रमशः पितृ और मातृ तत्व के बोधक है और आनंद की स्थिति वह है जिसमें ये दोनों तत्व एक ही में समग्रता में समाहित हो जाते हैं। यही स्थिति शिव और शक्ति के समाहित स्वरूप अर्धनारीश्वर का होता है। इस एकाकार में द्वितीय पक्ष का कोई महत्व नहीं रहता। एकमेवा द्वितीयम् बाइबिल में भी सर्ग संबंधी अध्याय में वर्णित है कि ईश्वर ने मनुष्य रूप में अपनी ही प्रकृति बनाई और उन्होंने उसे ही पुरुष और स्त्री की में सृष्टि की। जब दोनों का एकाकार होता है तो आनंद का दर्शन होता है। यह स्थिति भारतीय दर्शन में समत्व या योग की है। समत्वम योग उच्यते। विषमताओं से आवृत होकर भी चित्त शक्तियों को शांत बनाए रखना ही योग है। यही अर्धनारीश्वर के विग्रह की अभिव्यक्ति हुई। द गुप्त काल। वैष्णव धर्म की तरह शैव धर्म भी गुप्त काल में एक अत्यंत विकसित धर्म था। यद्यपि गुप्त शासकों में वैष्णव धर्म को अपना राज्य धर्म बनाया था तथा इसके विकास में अत्यधिक योगदान दिया था, इसी से उनकी उपाधि परम भागवत, परम वैष्णव आदि मिलती है तथा उनके सभी सिक्कों पर गरुड़ चिन्हांकित राजदंड प्रायः दाहिनी ओर अंकित किया गया है। पर किसी भी गुप्त शासक ने शैव धर्म का विरोध किया हो तो ऐसा किसी भी स्रोत से ज्ञात नहीं। यही कारण है कि प्रायः गुप्त शासकों के काल के शिवलिंगों की प्राप्ति विभिन्न स्थानों से हुई है, जो अधिकांश लेख युक्त हैं। यह इस धर्म का की व्यापकता का परिचायक है। इसी से दोनों धर्म इन शासकों के राज्य में साथ साथ विकसित होते रहे। पुरातात्विक तथा साहित्यिक दोनों ही स्रोत इसके विकास का परिचय देते हैं। इसकी पीठिका पहले से ही चली आ रही थी। गुप्त शासकों के आगमन के पूर्व और कुषाण शासकों के बाद भारशिव वंश के राजाओं के शासन का ज्ञान मिलता है। भारशिव नामकरण का कारण ही प्रतीत होता है कि वे अपने साथ शिवलिंग लिए रहते थे, संभवतः उसी के भारवाहन करने के कारण ये भार शिव कहलाए होंगे। पहला गुप्त शासक जिसके विषय में व्यापक ज्ञान प्राप्त होता है वह है समुद्रगुप्त। यह वैष्णव धर्मानुयायी था। हरिषेण की प्रयाग प्रशस्ति में उसकी संगीत कला की समता तुम्बरु के साथ की गई है। तुम्बीरु गांधार देश में तांत्रिकों द्वारा शैव धर्म के एक स्तंभ माने जाते थे। इनको साक्षात शिव माना जाता था। पीसी बागची ने महाभारत के आधार पर गांधार देश में तंबरु शिव के होने का उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट है कि समुद्रगुप्त के समय शैव देवताओं की मान्यता समाज में स्थापित हो चुकी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्राहक मंत्री वीरसेन चाप पाटलिपुत्र का रहने वाला था, जिसने उदयगिरी गुफा में शिव का मंदिर बनवाया था। इससे ज्ञात होता है कि वैष्णव धर्मानुयायी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी और अधिकारी शैव धर्मानुयायी भी थे। शैव धर्म का प्रसार उस समय पाटलिपुत्र में था और उड़ीसा में भी। तभी पाटलिपुत्र के निवासी शिव भक्त वीरसेन शाव के ने उड़ीसा में शैव मंदिर बनवाया होगा। इसी शासक के मथुरा स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि उपमितेश्वर और कपिलेश्वर नामक दो लिंगों की स्थापना गुरुवायतन में की गई थी। डॉक्टर भंडारकर ने गुरुवायतन से अभिप्राय मंदिर से लिया है। इसका प्रयोग उनकी दृष्टि में उस मंदिर के लिए किया गया होगा जो उदिताचार्य नामक पाशुपत अनुयायी के गुरुओं की स्मृति में बनाकर उसमें इन लिंगों की स्थापना की गई हो। इन लिंगों पर गुरुओं की आकृतियां बनी है। इसका कारण यह रहा होगा कि इस प्रकार वेदंती मरने पर ब्रह्म में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार ये शैव गुरुओं का भी मरने पर शिव में विलीन होना माना गया है। कुमार गुप्त प्रथम के शासन काल में फैजाबाद के पास करम दंडा नामक स्थान से प्राप्त शिवलिंग पर अंकित अभिलेख से उसके मंत्री और बलाधिकृत पृथ्वीसेन द्वारा शिव मंदिरों को दान दिए जाने का ज्ञान प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट है इस वैष्णव क्षेत्र में भी शैव धर्म का विकास साथ साथ हो रहा था। साथ ही वहां देवद्रोणी शब्द का उल्लेख संबोधित करता है कि शिव का जुलूस भी निकाला जाता था। इस धर्म की महत्ता इस बात से भी स्पष्ट है कि इस अभिलेख का प्रारंभ नमो महादेवाय से हुआ है। स्कंदगुप्त का एक सामंत था हस्तिन, वह शैव धर्मानुयायी था। स्कंदगुप्त के कुछ सिक्कों पर बैल की आकृतियां अंकित मिली है। नंदी शिव का वाहन है, अतः बैल का चिन्ह शिव के प्रतीक रूप में शैव धर्म में मान्यता प्राप्त है। लिंगों के निर्माण की एक लंबी परंपरा गुप्त काल में ज्ञात होती है। अनेक स्थानों से विविध प्रकार के शिवलिंग इस काल के स्तरों से खुदाई में प्राप्त हुए हैं। कुछ पर केवल लिंग है और कुछ पर मुख बना है, जिनमें एकमुखी, चतुर्मुखी तथा पंचमुखी लिंग भी है। खोह, भूमरा, शंकरगढ़ आदि से भी शिवलिंग मिले हैं। बुद्धगुप्त के दामोदर अभिलेख में कोकमुख स्वामी का उल्लेख है, जो शिव ही है। वैन्यगुप्त के गुनैघर अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने अपने पूर्वजों की धार्मिक आस्था को त्याग कर वैष्णव के स्थान शैव धर्म स्वीकार कर लिया था। शंकर के अनेक नाम इस काल के अभिलेखों से ज्ञात होते हैं, यथा हर, ईश, भूतपति, शूलपाणी, शंभु, शिव, सर्व कपिलेश्वर, महेश्वर, पिनाकी, स्थाणु आदि। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में पशुपति के जटाजूट से गंगा के निकलने का उल्लेख है। समकालीन शासकों के समय की पुरातात्विक उपलब्धि से भी इस धर्म के विकास पर प्रकाश पड़ता है। मग शासक भीम वर्मन के समय की, जो स्कंद गुप्त का समकालीन था, शिव पार्वती की प्रतिमा कौशाम्बी से मिली है। परिव्राजक हरिस्तन के अभिलेख से ज्ञात होता है कि वह शैव था। बल्लभी के मैत्रक शासकों की उपाधि उनके अभिलेखों से परम माहेश्वर ज्ञात होती है। मौखरी शासक भी शैव थे। तभी ईशान वर्मा के हारहा अभिलेख के प्रथम दो श्लोक शिव की प्रार्थना में लिखे गए हैं। उसके पुत्र सर्व वर्मन के असीरगढ़ मुहर से उसका शैव होना ज्ञात होता है। अनंत वर्मन नामक मौखरी शासक ने 12 बर की गुफा में शिव की मूर्ति स्थापित किया था, जो आज भी है। वाटक नरेश भी शैव थे। हुण शासक मिहिर कुल शैव था, जैसा ग्वालियर अभिलेख से ज्ञात होता है। यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख भी उसे स्थाणु का उपासक बताता है। शालंकायन, नल, कदम्ब आदि वंश के शासक भी शैव थे। उदयपुर में एक लिंग जी के समीप स्थित नाथ मंदिर के एक लेख में लकुटधारी शिव का भरुकच्छ में उत्पन्न होकर भिगु से उपदेश प्राप्त करने का उल्लेख है। साथ ही कुशिक आदि का पाशुपति योग में निष्णात होने, दिच्छ की छाल पहनने, भस्म लगाने, जटाजाल रखने आदि की भी चर्चा है। चित्रा प्रशस्ति में शिव के भट्टारक लकुलेश के रूप में अवतरित होने का वर्णन है, जो काया रोहण लाट गुजरात देश में रहते थे। वहां उनके 4 शिष्य कुशिक, गार्ग्य, कौरुष और मैत्रेय हुए, जो पाशुपत सिद्धांतों का पालन करते हुए उससे विकसित 4 शाखाओं के संस्थापक बने। गुप्त काल के शिव मंदिरों में विविध प्रकार के लिंगों की स्थापना की गई है। एकमुखी, चतुर्मुखी, पंचमुखी, साद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान आदि प्रतीकात्मक लिंग शिव परिवार की स्वतंत्र मूर्तियां भी इस काल की प्राप्त हुई है। लकुलिश की मूर्ति चंद्रगुप्त द्वितीय के 5वें राजवर्ष के मथुरा वाले स्तंभ पर लकुट लिए त्रिनेत्रधारी मिली है। इसी प्रकार की आयाग पट्ट युक्त व्याख्यान मुद्रा में बैठी शिव मूर्ति मिली है। उनसे कौशाम्बी से प्राप्त शिव पार्वती की स्वतंत्र मूर्ति तथा ग्वालियर संग्रहालय में बैठी शिव पार्वती की मूर्ति, मथुरा से अर्धनारीश्वर की मूर्ति, दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय तथा पटना संग्रहालय में मुंडेश्वरी, जिला शाहबाद से प्राप्त विष्णु के साथ शिव की हरिहर मूर्ति, पुनः मुंडेश्वरी से मिली पार्वती की मूर्ति, शिव परिवार कार्तिकेय का मयूर पीठासीन, भारतीय कला भवन काशी तथा पटना संग्रहालय की मूर्तियां, उदयगिरी से महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति, भूमरा से गणेश की एक खंडित मूर्ति आदि भी इस समय मिली है, जो इस धर्म की प्रधानता की परिचायक है। मृण मूर्तियों में भी शिव परिवार की मूर्तियां बनने लगी थी। भीतर गांव से प्राप्त क्षतिग्रस्त फलकों में गणेश, दुर्गा की पहचान की गई है। अहिछत्र के उत्खनन से प्राप्त गुप्तकालीन शिव मंदिर के फलकों पर शिव चरित का अंकन मिला है। शिव मंदिरों के निर्माण की बहुलता इस समय रही है। शंकरगढ़ का शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, जबलपुर इटारसी रेलमार्ग पर उपचार रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के पास, नचना कुठार का पार्वती मंदिर भूमार के पास अजयगढ़ के निकट मध्य प्रदेश, अहिछत्र बरेली उत्तर प्रदेश का शिव मंदिर इस बात का परिचायक है कि शैव धर्म जहां जनमानस में व्याप्त था, साहित्यिक ग्रंथों से भी इस धर्म के प्रसार पर प्रकाश पड़ता है। गुप्तकालीन साहित्यकारों में सर्वश्रेष्ठ स्थान है कालिदास का। वह शिव के अनन्य भक्त थे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के प्रति उनकी घनिष्ठ श्रद्धा ज्ञात होती है। उसका ज्ञान उनके काव्य मेघदूत से मिलता है। इसमें उन्होंने बड़े ही आस्था से महाकाल के मंदिर का वर्णन किया है तथा उनकी स्तुति की है। उनकी दूसरी कृति कुमार संभवम में देवताओं की प्रेम क्रीड़ा का वर्णन है। यह काव्य हिमालय पुत्री पार्वती और शिव के प्रेम से प्रारंभ होकर उनके विवाह तथा कुमार कार्तिकेय के जन्म के साथ समाप्त होता है। उनकी अन्य कृतियां रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि सभी शिव की उपासना से प्रारंभ होती है। इनमें शिव के विभिन्न रूपों तथा गुणों की चर्चा की गई है। विक्रमोवर्षी में अर्जुन द्वारा शिव की उपासना के लिए किए जाने का उल्लेख है। कुमार संभव में वाक और अर्थ की तरह आपस में जुटे तथा अलग जगत पिता और माता परमेश्वर शंकर और पार्वती की वंदना की गई है। वागर्था विव संप्रिक्त वागर्था प्रतिपत्ते जगतम पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यह शंकर के अर्धनारीश्वर स्वरूप को व्यक्त करता है। कुरकीहार से अष्टधातु की एक ऐसी ही मूर्ति तथा वैशाली की मुहरों पर अंकित इसी प्रकार की मूर्तियां मिली है। कालिदास ने अपने ग्रंथों में शिव विष्णु और ब्रह्मा इन त्रिदेवों की उपासना की है। कला में भी एक मूर्ति में त्रिमूर्ति की प्रतिस्थापना है, ऐसी भावना अद्वैत की बोधक है। इस प्रकार की एक मूर्ति एलिफेंटा से भी प्राप्त हुई है जिसमें एक ही साथ तीनों देव अंकित हैं। और इस समय उत्तर तथा दक्षिण भारत में शैवों और वैष्णवों के बीच संघर्ष था। कालिदास ने इसको समन्वित करने के लिए त्रिदेव भी कल्पना की है कि और दोनों को समान स्तर पर ला दिया। इसको कला में हरिहर मूर्तियों द्वारा प्रकट किया गया है जो इस समय की बहुतायत से मिलती है। इनमें एक ही मूर्ति में आधे में शंकर और आधे में विष्णु। शंकर की मूर्ति में त्रिशूल, जटाजूट, पाश और मृगचर्म है तो विष्णु की मूर्ति में शंख चक्र और किरीट मुकुट है। शिव की अष्ट मूर्ति का उल्लेख भी कालिदास ने किया है। उसके द्वारा उन्होंने प्रकृति के आठ तत्वों जल, पावक, समी, क्षिति, सूर्य, भीम, उग्र और महादेव तथा आठ प्रतीकों जल, अग्नि, होता, आकाश, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी और वायु को प्रतिरूपित किया है। गोकर्ण के शिव, काशी के विश्वनाथ तथा उज्जैन के महाकाल तथा ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख भी उनके ग्रंथों में मिलता है। इसी समय पुराणों का भी संकलन हुआ था। इनमें शैव धर्म की भी व्यापक चर्चा है। कुछ पुराण तो शिव से ही संबंधित है, जैसे लिंग, शिव, मार्कंडेय, स्कंद, वायु आदि। स्कंद पुराण में रुद्र ने एक स्थल पर कहा है कि सृष्टि के आदि में मैं ब्रह्मा से भी पहले था, अब इस समय मैं ही ईश्वर हूँ और भविष्य में भी रहूंगा। अहम एको जगत धातु राश प्रथमेश्वर वर्तामि च भविष्यामि मत्तोऽन्योऽस्ति कश्चन। वायु पुराण में शिव के 28 अवतारों का उल्लेख है तथा उन स्थानों की भी चर्चा है जहां ये अवतार हुए थे, जैसे हिमालय, गंगाद्वार, हरिद्वार, वाराणसी, कालंजर, कायारोहण, बड़ौदा आदि। इससे शैव धर्म के विस्तार का ज्ञान मिलता है। यहाँ वर्णित है कि देवताओं के महान होने के कारण शिव को महादेव कहा गया है। देवेषु महान देवो महादेवस्ततः स्मृतः। लिंग पुराण में वाड़ासुर द्वारा शिवलिंग को सिर पर रख कर पूजा करने का उल्लेख है। इस काल का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है कौंडिन्य द्वारा रचित पाशुपत सूत्र की व्याख्या। इसमें लकुली के जीवन पंच मंत्रों पाशुपत मत के उपासकों के जीवन के चार विकास मान सोपानों पंच रथों आदि की चर्चा की गई है। इसमें नई क्रियाओं का विधान है जो पूर्व वैदिक परंपरा से पूर्णतया भिन्न है, पर डॉक्टर दास गुप्ता के अनुसार इसने कहीं भी अपने स्रोत के रूप में द्रविड़ ग्रंथों का उल्लेख नहीं किया है।